نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير Don't be sad غم نہ کیجئے لا تحزن آج اس میں سے ڈے سکس کے ساتھ ہم جو قرآن پاک کی آیت لیں گے اس کا نمبر نوٹ کیجئے گا سورة البقرة آیت 274 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو لوگ اللہ کی راہ میں شب و روز اپنے مال پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور روز قیامت ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ تو قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں جو لسٹ تیار ہو رہی ہے اس میں اس آیت کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ رات کو بھی خرچ کرنا اور دن کو بھی خرچ کرنا، اور دوسری بات ہے ظاہر کر کے بھی خرچ کرنا اور چھپا کر بھی خرچ کرنا۔ چاروں چیزوں کو جمع کر لیجئے تو مراد یہ ہے کہ جب جہاں جس وقت موقع مل جائے خرچ کر دیجئے۔ رات ہے تو دن کا انتظار نہ کیجیے کہ اچھا صبح ہو جائے گی تو کروں گی، اور اگر صبح ہے تو رات کا انتظار نہ کیجیے، اور اگر دوسروں کے بیچ میں نیکی کا موقع مل رہا ہے تو کر دیجیے، اس کا انتظار نہ کیجیے کہ اکیلے میں کروں گی، اور اگر کسی نیکی کا موقع اکیلے میں بن گیا ہے تو پھر یہ انتظار نہ کیجیے کہ اچھا چار لوگ جمع ہو جائیں اور ذرا کیمرے آن ہو جائیں تو پھر کروں گی۔ ویڈیو کے چلنے کا انتظار نہ کیجئے بلکہ چلتے جائیے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت کیجئے، یا صبح ہوتی ہے یا شام ہوتی ہے، اور اسی طرح یا انسان تنہا ہوتا ہے یا دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ میں یہ تڑپ اور طلب رکھیں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے گا، اور اگر آپ اس خاموش سی لسٹ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو صرف قرآن پاک کی آیات ہی کافی ہیں ہمارے خوش رہنے کے لیے اور غموں کو مٹانے کے لیے۔ کل کے سبق میں ہم نے جو ٹاپکس کور کیے تھے ڈونٹ بی سیڈ کے، اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ ادعیہ معذورہ، یعنی وہ دعائیں جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے صحابہ اور اسلاف سے ملتی ہی گئیں کہ جن کو پڑھنے سے غم دور ہوتے ہیں۔ پھر صرف مسکرائیے پہ بڑی بات ہوئی، یہ کسی کا فیڈ بیک مجھے ملا کہ میں تو لفظ مسکرائیے جسے اسکرین پہ رہا میں اس کو دیکھ کر ہی مسکراتی رہی، تو الحمدللہ مسکرائیے۔ اور آپ نے دیکھا کتنی لمبی بات ہوئی اس پہ، صرف ایک ٹاپک مسکرائیے، چلیے اس وقت بھی مسکرائیے۔ میں نے کسی سے کہا کہ پھر آپ کتنا مسکرائیں، کہنے لگی کس کے ساتھ مسکراتی اکیلی تھی، تو میں نے کہا یہی سکھا رہے ہیں آپ کو، اکیلے میں مسکرانا سیکھیے، دوسروں میں بھی مسکرائیے۔ اور اگر آپ کل سے اب تک اس ایکٹیویٹی پہ کام کر رہے ہیں نا کہ اسمائل 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 اٹس سننا اسمائل اٹس فری، تو یقیناً آپ کے گھر والوں کے ساتھ تعلقات پہلے سے 10-15% 10-15% بہتری کی طرف چل پڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ میں دوسروں کے لیے بھی خوشی کا ذریعہ بنا دے۔ پھر غم نہ کریں، اور غم کی نعمت اور معرفت کی نعمت اور خوش رہنے کا فن، اور خوش رہنے کے فن کے اصول، اور خوش رہنے کا ایک اصول دیکھا تھا، ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت ٹاپک۔ آج جس ٹاپک سے بات شروع ہوگی وہ ہے یہ بھی سوچئے۔ کیا سوچیں، پہلے ہی بڑی سوچیں، لوگ تو پریشان رہتے ہیں ہائے اب یہ بھی سوچنا ہے تو وہ بھی سوچنا ہے، تو اصل میں سوچ کا بڑا گہرا تعلق ہے ہمارے غموں اور خوشیوں سے۔ آئیے دیکھتے ہیں، آپ کو غم نہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ محتاج ہیں تو دوسرے قرض دار ہیں، اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں تو ایسے بھی تو ہیں جن کے پیر کٹے ہوئے ہیں۔ چند سیکنڈ سوچئے۔ اگر آپ کو مصائب کی شکایت ہے تو بہت سے لوگ سالوں سال سے ہسپتالوں میں پڑے ہیں، اگر آپ کا کوئی بچہ مر گیا ہے تو ایسے بھی ہیں جن کی اولاد کسی حادثے میں ماری گئی۔ آپ غم نہ کریں کیونکہ آپ مسلمان ہیں، اللہ رسول ملائکہ یوم آخرت اور اچھی بری تقدیر پر آپ کا ایمان ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو رب کے منکر ہیں، رسول کی تکذیب کرتے ہیں، کتاب میں ان کا اختلاف ہے، یوم آخرت کا انکار کرتے ہیں، قضاء و قدر میں شک کرتے ہیں، تقدیر کو نہیں مانتے یا ان کو ڈاؤٹس ہیں۔ آپ کو غم نہ کرنا چاہیے کیونکہ اگر گناہ کر لیا ہے تو توبہ کر لیجئے، خطا کی ہے تو استغفار کر لیجئے، غلطی کی ہے اگر تو اصلاح کر لیجئے، در رحمت کھلا ہے، अल्लाह की बख्शिश और रहमत आम है, वो तौबा कबूल करता है। आप गम न करें, क्योंकि गम से आपके असाब में तशन्नुज पैदा होगा, यानी असाब खिंचेंगे, आपके मसल्स पुल कर जाएंगे। यह आपके वजूद को हला देगा, दिल को परेशान कर देगा, रातों की नींद हराम हो जाएगी और रत जगा करना पड़ेगा, यानी रातों को जाग लें। एक रात का जागा अब अगले पूरे दिन दिल पर बोझ डालता है, याद रखिए। गैर मसनून है पूरी रात जागना। तो शायर क्या कहता है, कितनी ही मुसीबतें ऐसी हैं जिनसे आदमी तंग हो जाता है, हालांकि अल्लाह ताला इसे छुटकारा दिला सकता है। आदमी समझता है कि इनसे बचा नहीं जा सकता और अल्लाह ताला इन्हें दूर करके फराही अता कर देता है। तो क्या पता चला, सोचिए अपने से नीचे वाले को देखिए, ये है सोच इसमें। आप देखिए, सच्चे कलमा गो को कभी डिप्रेशन नहीं होता। अपनी नज़रों में जमा लीजिए इस जुमले को, सच्चे मोमिन को कभी भी डिप्रेशन नहीं होता, क्योंकि सच्चा मोमिन अल्लाह पे नज़रें लगाता है, हमेशा अपने से नीचे वाले को देखता है और उसके दिल में इस बात का यकीन होता है कि मेरा रब मेरे साथ कोई भी बुराई नहीं करेगा। और ज़िंदगी का एक असूल याद रखिएगा कि अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रह जाना, इससे बड़ा खुश रहने का कोई राज नहीं। अभी तक हमने जितनी भी टिप्स पढ़ी है ना, अगर हम उनके लफ्ज़ बदल देना तो उनमें से अक्सरियत का ताल्लुक जो है वो तकदीर पर राज़ी रहने से। फिर आप देखिए कि हमें चंद चीज़ें सोचनी है। मसलन, अगर आप मोहताज हैं, अल्लाह ना करे हो, तो दूसरे तो मकरूज़ हैं। कर्ज में होना ज़्यादा मुश्किल है कि मोहताजी? अगर आपके पास गाड़ी नहीं तो दूसरों के पास पाँव नहीं। सोचिए इसको, पाँव ही ना होते तो गाड़ियों का क्या फ़ायदा होता? आप मसाइब का शिकार हैं, सोचिए। तो कई लोग ऐसे भी तो हैं जो हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं। अगर आपके बच्चे को कोई मसला है तो बहुत से लोग तो बेऔलाद भी हैं। आप गम न करें, क्योंकि बड़ा बड़ा लिख ले दिल की तख्ती पे, क्योंकि आप मुसलमान हैं। मुसलमान और गम दो ना मैच करने वाली चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों के ऊपर गौर करें और आप देखिए कि आपका दिल ऐसा मुतमईन हो जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप देखिए कि एक तरफ पॉजिटिव चीज़ें हैं, एक तरफ नेगेटिव है, बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी आजमाइश भी आ जाए तो बस आपने ये पांच नुक्ते दिल में रखने हैं। तो जब ज़िंदगी में अपने से नीचे देखेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे, आपकी ज़िंदगी खुशियों भरी ज़िंदगी हो जाएगी। फिर इसी तरह से एक और चीज़ भी देख लीजिए, और वो क्या है कि अगर गम आ जाए तो क्या करें। ये कहना तो बहुत आसान है ना, गम ना करें, लेकिन क्या ये आपके अपने इख्तियार में? आपके इख्तियार में तो नहीं है। तो कोई नुस्खा, कोई तरीका तो ऐसा होगा ना कि जिस पे गौर व फिक्र करने के बाद, जिसके ऊपर अमल करने के बाद हमारे गम मिटने लगेंगे, गम हल्के होने लगेंगे। तो नोट कीजिएगा चंद चीज़ें। पहली चीज़, आप देखिए कि अगर गुनाह किया है, हो सकता है गुनाह तो होता ही इंसान से, करता नहीं है, हो जाता है, जैसे पाँव फिसलता है, खुद से तो बंदा नहीं गिरता, तो तौबा कर लीजिए। अगर दिल पे गम है किसी गलती का तो इसलाह कर लें, और अगर कोई ख़ता हो गई उसके गम में जी रहे हैं तो इस्तग़फ़ार कीजिए, और अगर आपको लगता है कि रब आपसे रूठ चुका है तो उसको मना लीजिए। अगर किसी की हक तलफी का गम है जो माजी में की थी, तो जाइए उससे उठकर माफ़ी मांग लीजिए, और अगर कोई नुकसान किया है तो इसकी तलाफ़ी कर लीजिए, क्योंकि अल्लाह का दर रहमत खुला हुआ है। हम बस सब अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें जो हमारे इख्तियार में होती भी हैं उससे भी फ़ायदा नहीं उठाते, याद कर लीजिए ये चीज़। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शैतान सिर्फ ये कहकर मायूस कर देता है कि तुम तो बड़े गुनाहगार हो और तुमने तो इतनी ख़ताएँ की हैं, और वही बात है कि फिर मुहावरे भी इतने आम कर दिए जाएं कि जिसके बाद तौबा करने में तो शर्म आए और गुनाह करने में कोई शर्म ना आए। तो गम ना करिए इसलिए कि आपके रब का दर रहमत खुला हुआ है। सूरत ज़ुमर की आखिरी आयात में से, आयत 53, आपको मुझे बड़ी उम्मीद दिलाती है। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीया इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। कह दो कि मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो जाओ, बिल यकीन अल्लाह ताला सारे गुनाहों को बख्श देता है, वाकई वो बड़ी बख्शिश वाला और बड़ी रहमत वाला है। तो क्या पता चला, बी होपफुल। जितना आप उम्मीदों को नज़रों में रखेंगे, अल्लाह की रहमतों पे यकीन होगा आपका, उतना ही ज़्यादा अल्लाह ताला आपके गमों को दूर करेगा। तो चलिए अगली टिप पर चलते हैं, और वो क्या है, जज्बात पर काबू रखें। याद रखिए, जो लोग जज्बाती होते हैं ना, अक्सर दुखी रहते हैं, किसी न किसी की बात उनको बुरी लगी ही रहती है, किसी न किसी बात पे वो माइंड किए ही होते हैं। तो आइए देखते हैं कि जज्बात की क्या अहमियत है। आप देखिए कि दो बातों की वजह से जज्बात बेकाबू होते हैं और एहसासात भड़कते हैं। एक होती है बहुत बड़ी खुशी मिली, या फिर आप बहुत बड़ी मुश्किल में घिर गए। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे दो किस्म की आवाज़ों से रोक दिया गया, एक वो जो नेमत पा जाने पर निकलती है, दूसरी वो जो मुसीबत के वक्त निकलती है। मुराद आप समझ ही गए होंगे। अमूमन नेमतों के मौके पे कौन सी आवाज़ें हैं जो बंदे को मस्त कर देती हैं, और मुसीबतों के वक्त पे आहोजारी और मरसी और नौहा खानी की आवाज़ें। और फरमाया, जो छूट जाए इस पर अफसोस न करो, और जो नेमत अल्लाह ने दी है इस पर उतराओ नहीं। फिर आपने फरमाया, सब्र तो वाकई इस वक्त होता है जब पहला सदमा पहुँचे, लिहाजा अजीम खुशी या शदीद मुसीबत के वक्त जो शख्स अपने जज्बात पर काबू रखे, इसे सुबात का दर्जा, रसूख की मंजिल और शादमानी और नफ्स पर गलबे की मसरत हासिल होती है। एक एक लफ्ज़ पे गौर करें ना, तो यही चाहिए हमें खुश होने के लिए। इंसान के वसफ में ये बयान फरमाया गया कि इसे खुशी मिलती है तो खुशी के मारे बेकाबू हो जाता है, और जब शर लाहक होता है तो घबरा जाता है, खैर पहुंचती है तो दूसरों को मना करता है, यानी सारी खैर खुद ही खाना चाहता है, खुद ही लेना चाहता है, शेयरिंग नहीं होती। सिवाय इन नमाजियों के जो घबराहट या खुशी हर हाल में इतदार पर रहते हैं, इल्लल मुसल्लीन। आसानी पहुंचती है तो शुक्र करते हैं, मुसीबत आती है तो सब्र करते हैं। गर्म जज्बात इंसान को मुश्तइल कर देते हैं, इंसान के दिमाग में शोले उभरने लगते हैं, इसे मुस्तरब और बेचैन कर देते हैं, इसकी नींद उड़ा देते हैं। जब इंसान को गुस्सा आता है तो वो सुर्ख हो जाता है, अल्लाह ना करे हमें ये मंजर देखना पड़े, मुंह से झाग निकालता है, धाड़ता और चिल्लाता है, इसके जज्बात खौलते हैं, वो शोले ज्वाला बन जाता है और हद से तजावुज कर जाता है, और अगर खुश होता है तो फूले नहीं समाता, अपनी हदों से निकलने लगता है, और खुशी की ज्यादती में अपने आप को भूल जाता है, किसी से ताल्लुक मुनकते करता है तो इसकी मजम्मत करता है, कहता है मुझे किसी की जरूरत ही नहीं। खुशी के वक्त पे तो सच्ची बात है, चाल ही बदल जाती है अक्सर लोगों की, लोगों से बात करने हैं तो दूर की बात है, और इसके मुहासिन को भूल जाता है, यानी लोगों ने उसके साथ जितना भी अच्छा किया हो, कोई कितना ही खूबियों वाला क्यों ना हो, ये कहता है मैं तो इसको लिप्ट नहीं कराता, और इसके फजाइल से सरफे नजर कर लेता है, किसी से मोहब्बत करता है तो बस सारी अच्छाई और फजीलतों से इसे मुत्तसिफ कर देता है, यानी मुबालगा आरई की हद तक उसकी तारीफें करने लगता है, इसकी तारीफ में आसमान और जमीन के कलाबे मिलाता है। इसलिए तो हदीस में आया है, अपने दोस्त को हद में रहकर प्यार करो, हो सकता है वो किसी दिन तुम्हारे लिए नापसंदीदा हो जाए। अपने दुश्मन से हद में रहकर नफरत करो, मुमकिन है कभी वो तुम्हारा महबूब बन जाए। और दूसरी हदीस में, मैं तुझसे अदल चाहता हूँ, गज़ब और रिदा दोनों हालतों में, एक तवील हदीस में से ये चंद लफ्ज़ हैं। मोमिन को चाहिए कि अपने जज्बात पर काबू रखे और अक्ल को हाकिम बनाए, चीज़ों को तोले और मुनासिब कीमत दे, वो हक को पहचान लेगा, रुश्द व हिदायत को जान लेगा, हकीकत से वाकिफ हो जाएगा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने अपने रसूल बैनात देकर भेजे, इन पर किताबें नाजिल कीं, मीज़ान उतारी ताकि लोग अदल कायम करें। क्या पता चला कि बीच में रहना चाहिए, हर वक्त बात बात पे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आ जाना, ये एक इंसान को तो सूट भी नहीं करता। वो बारे तो नहीं है आप कि थोड़ी सी चीज़ पे आप ऊपर चले गए और ज़रा हवा निकली तो नीचे आ गए। इस्लाम इकदार, अखलाक और सलूक की एक मीज़ान देता है, यानी बैलेंस रिलीजन है। इसका रास्ता सीधा, इसकी शरीयत मुनासिब और इसकी मिल्लत मुकद्दस है। जैसा कि फरमाया, वजअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया, लिहाजा अदल एक मतलूब रवैया है। जैसा कि मामलात और अहकामात में भी इंसाफ मतलूब है, क्योंकि दीन सिद्क को अदल पर मबनी है। अखबार में सच्चाई, अहकाम, अक्वाल, अफाल और अखलाक में इंसाफ, जैसा कि फरमाया, तेरे रब का कलमा सिद्क को अदल के लिहाज से मुकम्मल है। वतम्मत कलिमत रब्बिक बिस्सिद्की वादला। तो क्या पता चला कि अपनी ज़िंदगी में जज्बात तो रखिए लेकिन जज्बाती ना हो। दो लफ्ज़ लिखिए जो मैं अक्सर अपने इर्द गिर्द रहते हुए लोगों से सीखती हूँ उनके रवैयों की वजह से, वो क्या है, जज्बात अच्छी चीज़ है। जज्बातियत बुरी चीज़ है, समझाने की कोशिश करती हूँ। आप देखिए, जज्बात तो ज़िंदगी का आगाज़ है ना, इमोशंस के बगैर एक बच्चा दुनिया में कैसे आएगा। लेकिन जज्बाती हो जाना, गोया कि आप कह लीजिए हर हाल में जज्बात पर काबू रखें। बेकाबू जज्बात की दो बड़ी वजूहात होती हैं, यानी अमूमन लोग कब जज्बातियत का शिकार होते हैं। नंबर एक, जब बहुत बड़ी खुशी मिलती है या फिर सख्त मुसीबत उसकी ज़िंदगी में आती है। ना खुशी में याद रहता है कि लोग हमें देखकर क्या कहेंगे, हम कैसे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किस जगह पहुंच चुके हैं। और इसी तरह से दूसरी तरफ भी अगर आप देख लीजिए तो लोग इसी किस्म की कैफियत का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह से आप देखिए कि दूसरे एंगल पे अगर आप लेकर सोचें तो आपको एक और चीज़ भी समझ आ जाती है कि लोग ऐसे वक्तों में खुद ही दुखी हो जाते हैं। तो बहुत बुरा लगता है, आपने वो वाकया कई बार मेरे से ही शायद सुना हो कि एक बादशाह को खुशी और गम में अपने ऊपर काबू नहीं रहता था, बाद में बहुत ही शर्मिंदा होता कि ये मेरे साथ क्या हो गया। तो किसी ने उसका इलाज क्या किया, एक ऐसी रिंग दे दी कि जिसको देखते ही वो खामोश रह जाता था, और गम में भी उसका यही हाल था। और उस पर लिखा था, इट शेल पास सून। खुशी के मौके पर सुनता तो उसको चैन आ जाता कि वाकई ये तो खत्म होने वाली है, मैं क्यों इतना खुश हो रहा हूँ। और गम पे भी कहता, कोई बात नहीं, वक्त तो चला ही जाएगा, वक्त तो गुजर ही जाता है। तो क्या पता चलता है, जज्बात पे काबू रखिए। फिर आप देखिए कि बड़ी खुशी और बड़ी मुसीबत में जब इंसान जज्बाती होता है ना, तो उसमें बाद में फिर उसको शर्म आती है। मसलन खुशी में क्या जज्बात होते हैं, ज़रा सा इसको देख लेते हैं, हद से निकल जाता है, फूले नहीं समाता, अच्छाई और फजीलतों के कलाबे मिलाता, शुक्र की जगह तकबर करता। और कोई शादी ब्याह या खुशी के मौके की महफिल याद करिए, लोग उठ के नाचना शुरू हो जाते हैं, अजीब व गरीब हरकतें, जिस्म हिल रहे हैं, बातें कर, बाद में ज़रा सोचिए शर्मिंदगी नहीं होगी। एकदम खुशी में एकदम चीखें मारी, धाड़े मारी, खुशी में ऐसे फटे, हा हुर्रा, को मैच जीत गए। यकीन कीजिए बाद में बंदे को शर्म आती होगी कि ये क्या मैं कर रहा हूँ। इसी तरफ देखिए, गम का वक्त हो तो मनफी जज्बात पैदा होते हैं, इश्तियाल उभरता है, चीखता चिल्लाता है इंसान, मायूसी और अंदेशे आने लगते हैं, हद से तजावज़ होता है, चेहरा बदल जाता है, इस्तराब और बेचैनी है। और अल्लाह न करे कोई मैयत घर में पड़ी और उस वक़्त जो कुछ हरकतें हो रही होती हैं, बाद में अगर लोगों को उसकी वीडियो को दिखाए तो शर्मिंदगी होगी। तो हमेशा याद रखिए, खुशी और गम के लिए तैयार रहें। ना खुशी पे इतना उछलने लगें कि लगे कि आप जैसा छिछोरा कोई नहीं, और ना गम पे ऐसी फजूल हरकतें करें कि बाद में आपको शर्म आ जाए। तो मतलूब क्या है, अजीम खुशी और शदीद गम के वक्त हमसे क्या मतलूब है? पहली बात है, नेमत के छिन जाने पे अफसोस नहीं करना, नेमत को पा लिया तो इतराना नहीं। सूरत हदीद में बिल्कुल इन्हीं लफ्ज़ों में कह लीजिए कि यही बात पेश की हुई आयत भी है, फला तास वला माफा तकुम, जो छिन गया उसके ऊपर तुम गम ना करो, और इसी तरह जो मिल गया उस पर बहुत अकड़ ना रखो। फिर इस तरह नेमत पाने पर इतराना नहीं, आसानी पहुंच गई तो शुक्र कीजिए, मुसीबत पहुंचे तो सब्र कीजिए, और गज़ब और रिजा दोनों हालतों में अदल रखिए। सही मुस्लिम की रिवायत है 7117, आपने फरमाया मियाना रवि रखो, अगर ये ना हो सके तो मियाना रवि के करीब रहो, यानी एतदाल करो, अगर एतदाल ना हो सके तो खैर, एतदाल के करीब रहो, अफरात तफरीत गलुफ और तासुब ना करो। पर इस पे मैंने अक्सर लोगों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, बहुत मुश्किल लगता है। मियाना रवि समझ गए, ओके। हमारे अपने ही मुस्लिम कल्चर में एक ऐसा तबका है, उनके घर गमी के मौके पे आप चले तो जाएं, ऐसे लगता है सबको सांप सूंघा हुआ है, हल्की हल्की हिचकियों की आवाज़ें आती हैं, किसी की जरूरत नहीं है पूछ सकें कौन किधर कैसा क्या हुआ। जो आएंगी सिस्टर आराम से चुपके से बैठेंगी, किसी सिस्टर को आप देख लें जिनका रंग लाल है, आंखें सूजी हुई हैं और गम के घूंट भर रही, समझ लीजिए ये करीबी रिश्तेदार है, या बीवी होगी, बेटी होगी, बहन होगी, माँ होगी। कोई कानों में नहीं पूछता क्या हुआ, माइंड करते हैं इसको। इसके बरक्स मैं एक ऐसे कल्चर को भी बहुत करीब से जानती हूँ, बाहर से अच्छी भली खवातीन आती हैं, बातें करती, खाती पीती, जो ही मैयत वाले घर में आई तो वो ढकोसले, टसवे, झूठे आंसू, गम तो होगा लेकिन शक्लें बिना बिना के दिखाती हैं कि मैं बड़ा ही गम हुआ, और ज़रा घर वाला इधर उधर गया तो पूछने शुरू हो गई, कितनी बच्चियाँ हैं, कितनी बेटियाँ, रिश्ते हुए कि नहीं हुए, अच्छा उसका, यानी पोज करते हैं। आज हमारे कल्चर में सेलिब्रेट करने का ऐसा रुझान पड़ गया कि हम अक्सर चीज़ों को पिक्चराइज ही कर रहे होते हैं, तो याद रखिए दोनों रवैयों से बचकर वाकई सब्र का रवैया। मैं बहुत मुतासिर हुई जिस गिरोह की मैंने बात की, उनके करीब रहकर थोड़ी देर देखा, उनके घरों में ऐसे मौक़ों पे गए तो वाकई एक कह लीजिए कि खूबसूरती थी, कोई जरूरत ना करें। बाद में बाहर जाकर कोई पूछ ले हुआ क्या, किसका गया, किसकी बेटी, किसका बेटा, लेकिन सामने नहीं पूछ सकता। तो ऐसे लोग फिर अपनी इज्जत को कायम रखते हैं। फिर तीसरी चीज़ हमने इसमें सीखी है कि मेज़ाने अदल हर जगह, यानी अदल की तराजू हाथ में पकड़िए। इकदार आपकी, यानी आपकी रिवायात हैं, आपके नॉर्म्स हैं, उस पर इज्जत ना आने दीजिए। अखलाक के मामले में अदल पे रहिए, ना बहुत स्माइली के हर एक के गले पड़ रहे हैं, और ना बिल्कुल रूखे सूखे के कोई आपकी शक्ल ना देखना चाहे। मामला दुरुस्त रखिए, अहकाम पे अमल कीजिए। दीन बैलेंस रिलीजन है, अल्लाह हमें भी बैलेंस बना दे।